بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا گن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوش کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی بھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتینت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ آج شنیوار ہے، فروردین کی 6، شابان کی 23 اور مارچ کی 26 تاریخ۔ شروع ہمارے کاریکرم کے بارے میں ایک سوچنا سن لیں۔ 27 مارچ سے ہماری فریکوینسیاں بدل رہی ہیں۔ ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ شروع ہمارے آج کے کاریکرم کے روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سزا کی بھانتی سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ عید نوروز کے سمبندھ میں وشیش کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتیم اور ساپتاہک کاریکرم ہوگا اجول بھوشیہ۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہتادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ودیش منتری نے کہا کہ ایران سعودی عرب سے پانچویں دور کی وارتا کے لیے تیار ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر ناٹو نے سیما لانگی تو کریملین پرمانو حملے سے نہیں چکے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اگر روس راسائنک ہتھیاروں کا پریوگ کرتا ہے تو اس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ ایک پورو عراقی سانسد نے کہا کہ عراق کے کردستان چھتر کا 40% تیل اسرائیل جا رہا ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیہ نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ پانچویں دور کی وارتا کے لیے تیار ہے۔ امیر عبداللہیہ نے شکروار کو المیادین ٹی وی چینل سے بات چیت میں کہا کہ سعودی عرب سے سمبندھ اچھے نہیں ہیں، پرنتو اس کا ذمہ دار ایران نہیں ہے، اور تہران ریاض کے ساتھ پانچویں دور کی وارتا کے لیے تیار ہے۔ ودیش منتری نے کہا کہ دونوں دیشوں کے سمبندھوں کی راہ میں کئی چنوتیاں ہیں، اور ہم دونوں دیشوں کے بیچ وارتا کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا کہ رشتے سعودی عرب نے توڑے تھے، جبکہ ایران نے امارات اور کویت جیسے عرب دیشوں سے آج بھی اچھے سمبندھ ہیں۔ سعودی عرب رشتے توڑنے والا پہلا دیش تھا۔ ودیش منتری نے کہا کہ سعودی عرب کی نیتیوں کے بارے میں ہمارے کچھ ریزرویشن ہیں، مگر پھر بھی ہم نے اس دیش سے اپنے سمبندھ نہیں توڑے۔ 81 لوگوں کو پھانسی دینے کے جیسے سعودی عرب کے بیتوکے کاموں سے دیش کے ساتھ سمبندھ نشچت روپ سے پربھاوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ادھیکاری ایران سے اچھے رشتے نہیں رکھنا چاہتے، ہم مینا کی گھٹنا میں 460 ایرانی زائرین کی شہادت کو نہیں بھول سکتے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے یمن جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ بند ہونے اور یمن کی ناکابندی سماپت ہونے کا سواگت کرتے ہیں، اور اس مارگ میں ہر پریاس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ सोच गलत है कि यमन में जो कुछ होता है उसका संबंध ईरान से है। यमन के सारे मामलों का संबंध इस देश की जनता से है और फैसला यमन जनता के हाथ में है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने मिस्र से संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त बिंदु हैं जिनके आधार पर संबंधों की नई इमारत तैयार की जा सकती है।
यूरोपीय संघ के विदेश नीति आयुक्त ने आज कतर की राजधानी दोहा में कहा कि ईरान और विश्व की बड़ी शक्तियों के मध्य समझौता बहुत निकट है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जोसेफ बोरेल ने ये बात आज कल तक दोहा में चलने वाली कॉन्फ्रेंस में कही। जोसेफ बोरेल ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ हालिया टेलीफोनी वार्ता में कहा था कि यूरोपीय संघ ईरान की उस मांग का समर्थन करता है जिसमें तेहरान इस बात की गारंटी चाहता है कि अमेरिका दोबारा परमाणु समझौते से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि वियना वार्ता संवेदनशील बिंदु पर पहुंच गई है और अब ईरान और अमेरिका को अधिक लचक दिखानी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ईरान के लिए आर्थिक गारंटी का विषय महत्वपूर्ण है और हम इसके व्यावहारिक होने का समर्थन करते हैं और परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे क्योंकि हमने लंबा रास्ता तय कर लिया है। ज्ञात रहे कि अमेरिका ने न केवल परमाणु समझौते में अपने वचनों पर अमल नहीं किया बल्कि वो 8 मई वर्ष 2018 को एकपक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकल गया और ईरान के खिलाफ उसने अधिकतम दबाव की नीति अपनाई, पर अब स्वयं अमेरिकी अधिकारी भी इस नीति की नाकामी को स्वीकार कर रहे हैं।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। सऊदी अरब की अगुवाई में बने गठबंधन के युद्धक विमानों ने गत रात असाबिन क्षेत्र में बमबारी की जिसमें 8 यमनी शहीद हो गए। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सूत्रों ने बताया है कि इस बमबारी में कम से कम 8 आम नागरिक हताहत और 4 अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने इसी प्रकार गत रात सना शहर के अल हफा क्षेत्र पर भी 2 बार बमबारी की। ज्ञात रहे कि सऊदी अरब ने अरब इमारात और कुछ देशों की मदद से और अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद 26 मार्च 2015 से यमन के खिलाफ पाशविक हमला आरंभ कर रखा है जो अब तक जारी है।
यमन की सेना और स्वयंसेवी फोर्सेज के प्रवक्ता जनरल यहिया अल-सरी ने कहा है कि सऊदी गठबंधन की ओर से यमन की नाकाबंदी जारी रहने के जवाब में हमने सऊदी अरब की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी आरामको के प्रतिष्ठानों और रास तनुरा और राबेक तेल रिफाइनरियों पर बड़े हमले किए हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बड़े हमले की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसने 9 ड्रोन विमान गिराए हैं। यमन के अंसारुल्ला आंदोलन की ओर से शुक्रवार को बयान जारी करके बताया गया कि सऊदी अरब के भीतर कई प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए जिनमें जिद्दा नगर के भीतर आरामको के तेल प्रतिष्ठानों पर हमले से उसमें आग लग गई। यह हमला जिद्दा में जिस जगह हुआ है वो फार्मूला 1 रेस के स्थान से ज्यादा दूर नहीं है। यमन की ओर से ये बड़ा हमला उस समय किया गया जब इस देश पर सऊदी गठबंधन की ओर से जारी भीषण हमलों और नाकाबंदी को 7 साल पूरे हो गए हैं। सोमवार को सऊदी अरब ने कहा था कि यमनी सेना और अंसारुल्ला आंदोलन की ओर से होने वाले हमलों के नतीजे में तेल की सप्लाई कठिनाई में पड़ सकती है। उस समय यमन ने लाल सागर के तट पर स्थित सऊदी अरब की यम्बो तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। शुक्रवार के हमले के बाद सऊदी गठबंधन ने एक बयान में कहा कि तेल प्रतिष्ठान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और इस हमले का जिद्दा नगर में आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है। यमन पर 7 साल से जारी हमलों में सऊदी अरब का साथ देने वाले अमेरिका ने यमन के जवाबी हमले की निंदा की है।
सऊदी अरब के पाशविक हमलों को आरंभ हुए आज 8वां साल आरंभ हो गया है। इस अवसर पर समूचे यमन में भव्य रैलियां निकालेंगे। सऊदी अरब ने 26 मार्च 2015 को यमन के खिलाफ अपने पाशविक हमलों को आरंभ किया था। यमनी आज के दिन को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार रैली में भाग लेने वालों ने सऊदी अरब के पाशविक हमलों की भर्त्सना की और अतिक्रमणकारियों के मुकाबले में डटे रहने पर बल दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी हाथों में यमन का राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे और यमनी क्रांति के नेताओं हुसैन बदरुद्दीन और सैयद अब्दुल मलिक अल हुसी की तस्वीरें उठा रखे थे और अतिक्रमणकारियों को देश से निकालने तक प्रतिरोध के जारी रखने पर बल दिया। इन रैलियों में भाषण दे रहे ने कहा कि सऊदी अरब ने यमन पर जो हमला किया है वो अमेरिकी आदेश से किया है और अतिक्रमणकारी केवल अमेरिकी योजनाओं पर अमल कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध एक महीने से अधिक समय से जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखने के बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी समुद्र में उतार दी हैं, जिससे परमाणु युद्ध के खतरे की आशंका बढ़ गई है। प्राप्त समाचारों के अनुसार रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारा गया है। जानकार हलकों का मानना है कि रूस के इस कदम को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेमलिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
ब्रसल्स में यूक्रेन के मुद्दे पर उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो 7 औद्योगिक देशों के समूह G7 और 27 सदस्यीय यूरोपीय परिषद ने आपातकालीन बैठक की। इन बैठकों के बाद बाइडेन ने संवाददाता सम्मेलन में चेतावनी दी कि रूस अगर रासायनिक हमले करता है तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार जब बाइडेन से ये सवाल किया गया कि नाटो कार्रवाई करेगा या नहीं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम समय आने पर इसका फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि इसका मतलब यह है कि यूक्रेन में सीधे सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका 1,00,000 यूक्रेनी शरणार्थियों का स्वागत करेगा और भोजन, दवा, पानी और अन्य आपूर्ति के लिए अतिरिक्त $1,000,000 देगा।
रूस ने संकेत दिया है कि वो राजधानी कीव सहित 5 शहरों पर हमला करने वाला है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि अब तक की लड़ाई में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन और रूस की जंग को एक महीने का समय गुजर चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि जब तक की लड़ाई में इस देश के 1,351 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन की सेना के 14,000 जवान हताहत और 16 घायल हुए हैं।
इराक के एक पूर्व सांसद ने कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र का 40% तेल इसराइल जाता है। समाचार एजेंसी इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व इराकी सांसद गालिब मोहम्मद ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र और इसराइल के बीच जहां आर्थिक और सैनिक क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है, वहीं जासूसी के क्षेत्र में भी सहयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक तत्व दहोक की जेल में बंद हैं, जिन्हें रईर अहमद बारेजानी ने बंद कर रखा है। इस बयान से कई दिन पहले पिछले शुक्रवार को इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी मालिकी और इराक के एक अन्य राजनेता तुर्की अलजुदान ने कहा है कि अरबिल में जानवी शासन की खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट सक्रिय हैं।
कश्मीर पर चीन के विदेश मंत्री के बयान को लेकर भारत में लंबी बहस शुरू हो गई है और सरकार की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने में आई है। गत 23 मार्च को इस्लामाबाद में हुई OIC की मंत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कश्मीर पर हमने आज एक बार फिर अपने बहुत से इस्लामी दोस्तों की मांगें सुनी और इस मामले पर चीन की भी यही इच्छा है। चीन कश्मीर सहित सारे विवादों के हल के लिए इस्लामी देशों की कोशिशों का समर्थन जारी रखेगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं ईरान की क्षेत्रीय राजनीति, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल बंद करने पर प्रतिक्रिया और भारत नियंत्रित कश्मीर का बजट। तो सबसे पहले इस्लामी गणतंत्र ईरान की क्षेत्रीय नीति पर हम चर्चा करते हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार को लेबनान का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की विदेश नीति स्वाधीनता के उसूलों पर आधारित है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार को अपनी लेबनान यात्रा में कहा कि ईरान की विदेश नीति स्वाधीनता के उसूल पर कायम है, यानी न पश्चिम और न पूर्व किसी भी खेमे के दबाव में फैसले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में बनने वाली अलग अलग सरकारों की शैली और काम के तरीके में हो सकता है कि फर्क हो, मगर बुनियादी उसूल अपनी जगह कायम है। ईरान में इस समय राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की सरकार है। इस सरकार ने विदेश नीति के मंच पर नई शैली और नए ढंग से काम किया है। न पूरब न पश्चिम, स्वाधीन विदेश नीति, ये इस्लामी गणतंत्र ईरान का पुराना उसूल है और वर्तमान सरकार संतुलित कार्यशैली में इस उसूल पर काम कर रही है। इस सरकार ने कुछ महीने के अपने कार्यकाल में ये साबित कर दिया कि पड़ोसी देशों और इस्लामी देशों से रिश्तों को विस्तार देना उसकी प्राथमिकता है। रईसी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ हर तरह के तनाव को दूर करके अच्छे पड़ोस के वातावरण में कूटनैतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में सफलता से कदम बढ़ाए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस संदर्भ में कहा कि अरब देश इस्लामी जगत का मजबूत स्तंभ है। हम फारस खाड़ी के अरब देशों सहित सारे पड़ोसी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से भी ये बात साफ नजर आती है कि ईरान पूरे इलाके में मजबूत कूटनीतिक रिश्ते और व्यापक आर्थिक सहयोग देखना चाहता है। ईरान क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से क्षेत्रीय क्षमताओं को विकसित करके प्रयोग में लाने पर जोर देता है। ईरान बार बार कहता है कि वो क्षेत्रीय विवादों को हल करवाने में सक्रिय रोल अदा करने के लिए तैयार है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने यमन संकट का हवाला देते हुए कहा कि इस संकट को हल करवाने के लिए हम अपनी सारी क्षमताओं को प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब की बात की जाए तो इस देश की नीतियों के चलते ईरान से उसके रिश्ते खराब हुए, साथ ही इलाके का माहौल भी बिगड़ा है। दोनों देशों के तनाव की ओर इशारा करते हुए विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सऊदी अरब से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम तो सऊदी अरब के साथ वार्ता का पांचवा दौर आयोजित करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब की ओर से कुछ विरोधाभासी और बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे 81 लोगों को फांसी देने की घटना है। इन घटनाओं से दोनों देशों के संबंध प्रभावित होते हैं। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो ये रिश्ते सऊदी अरब ने तोड़े थे। ये लगता है कि जब ईरान ने पड़ोसी देशों और विशेष रूप से फारस खाड़ी के अरब देशों से संबंध बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता का ऐलान कर दिया है, तो अब अगर इन देशों की ओर से सार्थक जवाब आता है तो द्विपक्षीय रिश्तों का अच्छा वातावरण पैदा हो सकता है।
और अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान ने लड़कियों के स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में इससे कुछ दिन पहले ही लड़कियों के स्कूलों को सीमित स्तर पर खोलने की बात सामने आई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी रविश जैदी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने तालिबान से मांग की है कि लड़कियों का स्कूल खुलवाने की भूमिका जितनी जल्दी हो सके प्रशस्त करे। सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी करके बल दिया है कि लड़कियों का स्कूल बंद कराने के बारे में तालिबान का फैसला विश्व समुदाय के साथ सहयोग के लिए इस गुट द्वारा दिए गए वचन के विपरीत है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के फिर से कब्जे के बाद न केवल बहुत से कामों को उन्होंने बंद कर दिया बल्कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के लिए पाबंदी लगा दी। वास्तव में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने वाली सरकार के गठन के लिए विश्व समुदाय के साथ लेन देन हेतु तालिबान ने कुछ वादे किए हैं, किंतु अभी तक इस गुट ने अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं किया। उधर अमरीका की ओर से भी लड़कियों के स्कूल बंद किए जाने पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तालिबान की ओर से लड़कियों के स्कूल बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कतर में तालिबान और अमरीकी प्रतिनिधि मंडल के बीच होने वाली वार्ता को रोक दिया है। 2 दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपने पहले के बयान के विरुद्ध ये ऐलान किया था कि देश में 6ठी क्लास से ऊपर की लड़कियों के सारे स्कूल और कॉलेज अघोषित अवधि के लिए बंद रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में जब भी धर्म के अनुसार लड़कियों के स्कूल के ड्रेस और दूसरी समस्याएं हल कर ली जाएंगी तब ये स्कूल तालिबान नेताओं के निर्देश पर दोबारा खोल दिए जाएंगे। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला ऐसी हालत में किया गया है कि इससे पहले तालिबान ने इन स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है इस देश में लड़कियों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह शिक्षा व्यवस्था में सुधार बताया गया था। अफगानिस्तान में 23 मार्च से नया शिक्षण साल शुरू होता है। कुछ हलकों का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल को बंद करने के फैसले की मुख्य वजह तालिबान के भी इस मुद्दे को लेकर आपसी मतभेद हैं, जिसमें एक कट्टरपंथी गुट है जो समाज के अहम पदों और स्थानों तक लड़कियों और महिलाओं की पहुंच का विरोधी है। ये ऐसी हालत में है कि अफगानिस्तान के कुछ चैनलों की ओर से होने वाले शोध में बताया गया है कि तालिबान के बड़े नेताओं के बच्चे, विशेषकर तालिबान नेताओं की बच्चियाँ कतर सहित विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर के बजट पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। कश्मीर के एलजी ने जहां इस बजट को कश्मीरी जनता और युवाओं के विकास का कारण बताया है, वहीं विपक्षी दलों ने एक साथ इस बजट की आलोचना की है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि नई दिल्ली ने कश्मीर के हवाले से जो बजट पेश किया है वो जम्मू कश्मीर की तरक्की में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 1 लाख से जायद करोड़ की रकम बजट में रखी गई है जो विभिन्न योजनाओं के हवाले से इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, परंतु जब से यहाँ से धारा 370 हटाई गई यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को पैदा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि युवकों के लिए भी इस बजट में बहुत सारे उपाय रखे गए हैं, جبکہ یہاں کی بے روزگاری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام ورگوں پر بل دیا کہ وہ جتنی بھی کیندر کی یوجنائیں ہیں ان کا لابھ حاصل کریں۔ اس اوسر پر انہوں نے پترکاروں کو اس پر بریف بھی کیا۔ انہوں نے کہا،
پچھلے سال جب پردھان منتری جی کے نیتتو میں بھارت کی وت منتری نرملا سیتارمن جی نے 1,08,000 کروڑ روپے کا ریکارڈ بجٹ جموں کشمیر کو دیا تھا تو مجھے یاد ہے اس سمے اخباروں کی سرخیوں میں بہت سارے لوگوں نے ٹپڑی کی تھی، یہ ایتہاسک بجٹ ہے اور جموں کشمیر کے چہمکھی وکاس کے لیے اس سے بہترین بجٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم یہیں رکے نہیں، وکاس کے راستے پر چلتے رہے اور اس سال آدرنی پردھان منتری جی نے تتھا سمانیہ وت منتری جی نے ریکارڈ 1,12,950 کروڑ روپے، میں نے موٹے طور پر 1,13,000 کروڑ روپے کا بجٹ جموں کشمیر کی عوام کو دیا ہے۔
ادھر جتنے بھی جموں کشمیر کے وپکشی دل ہیں انہوں نے اس بجٹ کو صرف ٹیکنیکل بجٹ قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس اور انیہ دلوں جس میں پی ڈی پی، کانگریس اور سی پی آئی ایم بھی شامل ہیں نے کہا ہے کہ نئی دہلی کے جو پریاس ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل بجٹ لانے سے کچھ نہیں ہوگا، زمینی استر پر جو استھتی جموں کشمیر میں پائی جا رہی ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپیہ پیسے سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جائیں گے، اگر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو اس کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے مہا سچیو علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ یہ بجٹ دکھاوے کا بجٹ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیری جنتا کے دل جیتے جائیں اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ انہوں نے آروپ لگایا کہ 3 ورش سے جو استھتی کشمیر میں پائی جا رہی ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوا۔ دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہماری آج کی سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کارکرم اجول بھوش، پرنتو اس سے پہلے پرستوت ہے نوروز پر وشیش کارکرم۔
श्रोताओं, नवरोज का त्यौहार शांति और दोस्ती का त्यौहार है। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करेंगे। स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार करें।
हर दिन एक नया दिन होता है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन हर नया दिन नवरोज नहीं होता है। नवरोज ऐसा नया दिन होता है جس کے آنے سے پرکرتی بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ پودوں پر نئے پھول کھلتے ہیں اور پیڑوں پر نئی پتیاں نکلتی ہیں۔ زمین سے بوتے اگتے ہیں، برف پگھلتی ہے اور پانی بن کر میدانی علاقوں میں پیڑوں، پودوں اور فصلوں کو سینچتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے سوگند ہوتا ہے اور ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جس چیز کو بھی ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، واسطو میں وہ ایشور کی انوکمپا ہوتی ہے جسے ایشور نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جاتی یا دھرم کا ہو، سرشتی سے لاب اٹھانے اور اس کا آنند لینے کا حق رکھتا ہے۔
ایک بار پھر بسنت ریتو آ گئی ہے اور پرکرتی ہری بھری سندر چادر اوڑے پرکٹ ہو رہی ہے۔ نہ کیول مانو بلکہ سمست سرشتی اس رنگ برنگی ریتو کے آگمن سے اتساہت ایوم پرسن ہے۔ کوئل مدھر آواز میں کوک رہی ہے اور بلبل چہک رہی ہے۔ منشیہ پریم اور سنیہ لٹا رہے ہیں۔ وسنت پریم اور جیون کا سندیش لے کر آتی ہے، اسی لیے یہ پریہ ہے۔ اس کے آنے سے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لیکن افسوس اس منموہک ریتو کی آیو کم ہے جو سال میں کم سمے یا ادھک تر کچھ مہینوں کے لیے آتی ہے۔ حالانکہ مانو کو جس وسنت کا ادھک آشا ہے وہ ہے ستت سارومک اور آدھیاتمک وسنت، ایسی وسنت کی جو پوری دھرتی پر چھا جائے اور سمست ہردیوں کو پرفلت کر دے۔
عید نوروز سرشتی کا سندر ایوم منموہک چہرہ ہے کہ جو اپنے آنے سے پہلے منشیوں کو چنتن منن کے لیے آمنترت کرتا ہے۔ یہ ایسا تہوار ہے कि जो अपने साथ खुशियां और शांति लेकर आता है। लोगों के होठों पर मुस्कुराहट के फूल बखेरता है और देखने में सुंदर होने के साथ साथ भले लोगों के लिए आंतरिक सुंदरता का उपहार भी लाता है। वे लोग कि जिन्होंने अपने दिलों को ज्ञान एवं आज्ञा पालन से सजा रखा है और ईद नवरोज के दिनों में अपने अस्तित्व को हर प्रकार के पाप एवं अवज्ञा से पाक साफ कर लेते हैं, दूसरों की तुलना में इस प्राचीन ईद से अधिक लाभ उठाते हैं।
इस पर्व पर इतने अधिक ध्यान का एक कारण यह है कि यह वसंत के शुरू में होता है कि जो परिवर्तन एवं उदय का मौसम है। यद्यपि हम ऐसे संसार में जीवन व्यतीत करते हैं कि जो निरंतर परिवर्तन एवं नएपन की प्रक्रिया से गुजरता है, इसके बावजूद मशीनी जीवन ने इंसान को स्वयं से बेगाना और अजनबी बना दिया है। आज एक तरह के जीवन में इंसानों ने आदतों के समकक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा भरोसे के अभाव एवं दिल के उचटने को आधुनिक समाज में हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन जो परिवर्तन प्रकृति से शुरू होता है वह एक ऐसा अवसर होता है कि जो इंसान को परिवर्तन का निमंत्रण देता है और उसके थके हुए मन को निराशा एवं उदासीनता से मुक्ति दिलाता है। जब पेड़ों पर नई कलियां फूटती है, सूर्य थोड़ा नरमी से चमकता है, झरने फिर से बहने लगते हैं और जीवन की गूंज हर ओर सुनाई देती है, इंसान भी अपने अस्तित्व में वास्तविक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है और अपने दिल को ईमान, प्रेम और मानवता की कलियों से सजा सकता है। वह दूसरों की सहायता करके दोस्ताना माहौल पैदा कर सकता है तथा प्रसन्नता से भरा नया जीवन शुरू कर सकता है। इन परिवर्तनों में से एक ईश्वरीय अनुकंपाओं से लाभ उठाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के बारे में इंसान के दृष्टिकोण में परिवर्तन है। आज पर्यावरण ने मानवता के लिए जो खतरा उत्पन्न किया है वह ईश्वरीय अनुकंपाओं की अवहेलना और उपेक्षा करने के कारण है। यही कारण है कि ईरानी जनता वसंत के निकट आने पर प्रकृति को साफ सुथरा रखकर उसकी ओर ध्यान देती है और जंगलों एवं उद्यानों की सफाई कर विभिन्न प्रकार के फूलों एवं वनस्पतियों का स्वागत करती है।
नवरोज आती है ताकि उपेक्षा की गर्द को हमारे चेहरे से धो दे और हम में से हर किसी से कहे कि ताजगी और परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। अगर अभी तक नहीं कर सके हो तो अपनी जीवन शैली बदल डालो, अपने दिल को ईश्वर की ओर मोड़ दो और अपनी मान्यताओं में पुनर्विचार करो। संभव है इसकी जरूरत पड़े कि तुम्हें अपने विश्वासों और मान्यताओं का पुनर्निर्माण करना पड़े।
नौरोज का दस्तरखान, की जिसे हफसीन कहा जाता है, ईरानी घरों का एक आकर्षण है जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं के कंधों पर होती है। हफसीन दस्तरखान पर फारसी भाषा के अक्षर सीन से शुरू होने वाली सात चीजें चुनी जाती है। सब्जे यानी हरियाली घास, सेब, सिर यानी लहसुन, समनु या आटे का हलवा, सिरका, सोमाग, सिंजत एक प्रकार का बेर। इसके अलावा दस्तरखान पर आईना, कुरान मजीद, शमादान, मुर्गी का रंगीन अंडा, फल फूल मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जार में लाल मछली आदि हफ सीन दस्तरखान पर रखे जाते हैं। इस सुंदर दस्तरखान को तैयार करने में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नए वर्ष के आगमन के क्षणों से ठीक पहले घर की जिम्मेदार महिला घर के समस्त सदस्यों को दस्तरखान पर एक साथ बैठाती है और समस्त सदस्यों विशेष रूप से अपनी संतान से कुरान की आयतों के पढ़ने और दुआ मांगने की सिफारिश करती है।
हरियाली घास ताजगी और प्रकृति के फिर से जिंदा होने का प्रतीक है। गर्मी और ताजगी प्रकृति के चेहरे को बदल देती है और मुर्दा हुई जमीन में फिर से जान पड़ जाती है। इसका एक दूसरा पार्ट ये है कि अंधेरों और बुराइयों को भूल जाओ और नए जीवन के बारे में विचार करो। सेब स्वास्थ्य और सेहत का प्रतीक है। दस्तरखान पर इसे रखकर सभी के स्वास्थ्य और सेहत के लिए दुआ की जाती है। ईरानी जनता और विश्व समुदाय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, जिसने अब तक कई लाख लोगों की जान ले ली है। ऐसे अवसर पर सभी इंसानों की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए और इस महामारी के जल्द से जल्द खत्म होने की कामना करनी चाहिए। हफ्त सीन में से एक समनू है, जिसे गेहूं के दानों से बनाया जाता है, जो बहुत ही ऊर्जावान होता है। ईरानियों का मानना है कि ये पौष्टिक आहार से भरपूर है और दुनिया भर के सभी इंसानों को इस तरह का भोजन उपलब्ध होने की आशा की जाती है। लहसुन और सिरका स्वच्छता का प्रतीक है और इसे दस्तरखान पर रखकर गंदगी के दूर होने की कामना की जाती है।
इस्लाम के उदय के बाद ईरानियों ने दस्तरखान पर रखी जाने वाली चीजों में पवित्र कुरान का इजाफा कर दिया। पवित्र कुरान के मुताबिक बहार के मौसम में ईश्वर और प्रलय के दिन को पहचानने के लिए काफी निशानियां हैं। शीत ऋतु की गहरी नींद के बाद प्रकृति का नया जीवन मौत के बाद पुनः जीवित किए जाने जैसा है। कुरान मजीद ने अनेक बार इस प्रश्न के उत्तर में कि शरीरों के नष्ट और विलुप्त हो जाने के बाद ईश्वर उन्हें कैसे दोबारा जिंदा करेगा, कहता है कि क्या उन लोगों ने आसमान की ओर नहीं देखा कि किस तरह ईश्वर ने उसे फैलाया है और सजाया है, और यह कि ईश्वर ने उन्हीं की आंखों के सामने मुर्दा जमीन को जिंदा और सूखे पेड़ों को हरा भरा कर दिया। कुरान के अनुसार जहां कहीं भी वनस्पतियां उगती हैं, वह बुद्धिमानी ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। जीवन की निशानियों से खाली सूखी और मुर्दा जमीन बारिश की बूंदों से जीवित हो उठती है और उसमें पेड़ पौधे उगने लगते हैं। बड़े बड़े फूलों से लदे हुए वृक्ष पुनर्जीवन का प्रतीक है। वनस्पतियों का पुनः जीवन इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर मुर्दा चीजों को पुनर्जीवित करने की योग्यता रखता है।
वसंत जिस प्रकार ताजगी और खिलने की ऋतु है और सुंदर संसार में ईश्वर के प्रबंधन से पर्दा उठाती है, उसी प्रकार इंसान की प्रगति का मौसम भी है। जब वृक्ष नई टहनियों और नए पत्तों से अपने शरीर को ढकते हैं, तो ये हमें संदेश देते हैं कि इंसान भी ठहराव और निराशा के दौर से गुजरकर परिवर्तन और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। वसंत प्रकाश को मन में बसाने और मूल्यवान अवसरों से लाभ उठाने का मौका है। वसंत ऋतु नए परिवर्तनों की ऋतु है, नया रूप धारण करने और नए सिरे से उठ खड़े होने की ऋतु है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जो व्यक्ति दुनिया में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होने वाले परिवर्तनों से अवगत न हो, तो वो सबसे अधिक अनजान व्यक्ति है।
दिल और मन की ताजगी और सजावट पवित्रता का प्रमाण है, इसीलिए उसे घर और जाहिरी सजावट में सीमित नहीं करना चाहिए। निसंदेह हर वर्ष के शुरू में आत्मा और दिल की पवित्रता समस्त पवित्रताओं में सर्वोपरि है, ताकि इंसान का अस्तित्व समस्त गंदगियों, द्वेषों, बुराइयों और मनमुटाव से साफ हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ईश्वर फरमाता है कि ईश्वर क्षमा याचना करने वालों को पसंद करता है और पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है।
तो श्रोताओ, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद देश से गरीबी को मिटाने में रचनात्मक प्रयास नामक संस्था की चर्चा करेंगे।
ईरान की इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों के बारे में चर्चा के लिए जरूरी है, क्योंकि ईरान के दुश्मनों ने इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान की छवि खराब करने का बहुत प्रयास किया है। हालांकि ईरान ने एक राजशाही व्यवस्था से धार्मिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का रास्ता तय किया है और पिछले 4 दशकों के दौरान इस देश ने दुश्मनों की तरह तरह की साजिशों के बावजूद आश्चर्यचकित सफलताएं हासिल की हैं। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में ईरान की इस्लामी क्रांति का आंदोलन धार्मिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए शुरू हुआ, ताकि स्वाधीनता और स्वतंत्रता हासिल की जा सके और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके।
क्रांति के बाद 4 दशकों के अनुभवों में काफी सफलताओं के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी रही हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। ईरान ने एक तानाशाही शासन से धार्मिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफर किया है और पिछले 40 वर्षों के दौरान दुश्मनों की साजिशों के बावजूद सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने देश में गरीबी के उन्मूलन और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए हैं। क्रांति की सफलता के बाद इमाम खुमैनी सहायता समिति का गठन किया गया, ताकि पिछड़ों और वंचितों की मदद के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जा सकें।
दोस्तों, विश्व बैंक के दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1977 में ईरान की कुल आबादी में से करीब 46% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, जिसमें से लगभग 60% लोग गांव और 30% शहरों में रहने वाले शामिल थे। 1930 से 1950 के दशकों में असमान आय वितरण के मामले में ईरान तीसरी दुनिया के सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त देशों में से एक था। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद के आंकड़े ईरानी लोगों के जीवन में सुधार और शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं तक पहुंच में एक बड़ी छलांग को दर्शाते हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद गरीबी उन्मूलन और गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में भुखमरी को मिटाने में जिन संस्थाओं ने सफलतापूर्वक योजनाएं चलाई हैं, उनमें से एक रचनात्मक प्रयास नामक संस्था है।
रचनात्मक प्रयास संस्था की स्थापना इस्लामी क्रांति के सिर्फ 4 महीने बाद क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी के आदेश के अनुसार की गई थी। ईरान की इस्लामी क्रांति फरवरी 1979 में सफल हुई थी। उसके बाद देश में गरीबी के उन्मूलन, गांव और शहरों से बेरोजगारी को मिटाने और वंचितों की सहायता की आम जरूरत महसूस की गई। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पूर्व शासन के दौरान जो प्रशासनिक ढांचे और सरकारी विभाग शहरी व्यवस्था के विकास पर आधारित थे और शाही शासन के आर्थिक विकास के मॉडल में ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने, विशेष रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई जगह नहीं थी।
ईरान में गांव में एक बड़ी संख्या बसती थी, लेकिन इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले उन्हें आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नंबरदार मुखिया और सरकारें एजेंट ग्रामीणों का उत्पीड़न करते थे और उनसे विभिन्न बहानों से बड़ी रिश्वतें लिया करते थे। इसी के साथ ग्रामीणों को जान और माल की सुरक्षा हासिल नहीं थी, जिसके उनके दिमाग में दर्दनाक और कड़वी यादें आज तक बाकी हैं। पहलवी शासन की आर्थिक व्यवस्था में शहरीकरण और असेंबलिंग उद्योग पर जोर दिया जाता था और गांव में कृषि पर आधारित पारंपरिक प्रणाली का कोई स्थान नहीं था और वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। ये स्थिति न केवल बेरोजगारी और ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन और झूठी नौकरियों के झांसे दे जाने का कारण बनी, बल्कि गांव में कृषि और सामाजिक जीवन के ताने बाने को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों का सबसे अधिक उत्पीड़न भूमि सुधार योजना के तहत किया गया था।
भूमि सुधार योजना एक जटिल योजना थी जिसे अमेरिका और इसराइल ने ईरान के लिए तैयार किया था। ग्रामीणों के लिए इसका कोई लाभ नहीं था। वास्तव में ये योजना कम्युनिस्टों के प्रभाव को कम करने और मालिकों के अधिकारों की सीमित करने के लिए थी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से उन विदेशियों द्वारा तैयार की गई थी जो ईरान की परिस्थितियों से अज्ञात थे। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप किसान बर्बाद हो गए और खाद्य पदार्थों के लिए देश विदेशों पर आश्रित हो गया। ब्रिटिश विशेषज्ञ एरिक होगलैंड ने भूमि सुधार योजना की समीक्षा के लिए ईरान की यात्रा की। होगलैंड की समीक्षा का सार था, ग्रामीणों के हितों की दृष्टि से ये योजना बिल्कुल बेकार है। 1971 में ईरान के अधिकांश ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति उससे पूर्व के वर्षों से बेहतर नहीं थी जब इस योजना को लागू नहीं किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्टरों और पश्चिमी शोधकर्ताओं ने भूमि सुधारों के बारे में शोध किए और इस संदर्भ में लिखा, लाखों ग्रामीण और ज्यादा गरीब हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, 1960 के दशक में मजदूरी घट गई और सिंचाई की क्षमता सीमित हो गई। कृषि उत्पादों में प्रति वर्ष केवल 2% की वृद्धि हो रही थी, जबकि जनसंख्या में सालाना 3% और खर्चों में 6% की वृद्धि हो रही थी। 1968 में पहली बार ईरान में गेहूं का आयात शुरू किया। कई किसान जो भूमि सुधार योजना से पहले अपनी जमीनों में मालिक के रूप में खेती कर रहे थे, उन्हें अपने खेतों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। लाखों ग्रामीण और ज्यादा गरीब हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, 1960 के दशक में मजदूरी घट गई और सिंचा बेचने और शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस प्रकार 1963 से 1975 के बीच कृषि से संबंधित रोजगार में 30% की कमी हुई और 1944 से 1977 तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 50% से 9% तक रह गई। कृषि उत्पादों में कमी के बाद पहलवी शासन ने आयात बढ़ा दिया और 1960 तक खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर देश एक आयातकर्ता देश बन गया। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1963 में कृषि उत्पादों का आयात 10 करोड़ डॉलर का था, वहीं 1978 में बढ़कर 2.6 अरब डॉलर का हो गया, जिसमें सिर्फ अमेरिका से 2 अरब डॉलर का आयात किया जाता था। हालांकि ईरान में प्रतिवर्ष 70 लाख टन गेहूं और जौ की पैदावार हो रही थी, जो भूमि सुधार योजना के बाद घटकर सिर्फ 40 लाख टन रह गई।
1970 के दशक में गांवों और कृषि उत्पादों की उपेक्षा और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित पेयजल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं आदि में अभाव खेती बाड़ी में उनकी दिलचस्पी को खत्म कर दिया। 1970 के दशक में विश्व बाजार में तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों ने शहरी कारखानों का रुख किया। دوسری اور غریبی اور بنیادی آوشکتاؤں کی کمی نے گرامیوں کا شہر کی اور پلائن تیز کر دیا۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد گاؤں کے پنرنرمان کی پہل کی گئی اور کرشی کو پنرجیوت کرنے کی آوشکتا کے روپ میں رچناتمک پریاس نامک ایک سواتنتر اور لوک پریہ سنستھا کی استھاپنا ہوئی۔
रचनात्मक प्रयास की स्थापना का विचार पहली बार 10 छात्रों के एक समूह को पिछड़े इलाकों में भेजने के साथ पेश हुआ। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया था, एक ईश्वरवादी समाज में पीड़ितों और गरीबों के बीच संबंध स्थापित करना, दूसरे गांवों में आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना, साक्षरता में मदद करना और ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके ज्ञान और पेशेवर और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना रचनात्मक प्रयास का तीसरा लक्ष्य था।
उसका एक उद्देश्य मूल इस्लामी संस्कृति का प्रयास करना और गांव में इस्लामी क्रांति की भावना की जड़ों को मजबूत करना था। इस संस्था ने स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता पर बल दिया और इससे जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार स्वर्गीय इमाम खोनी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही शासन के पतन के 4 महीने बाद राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता की प्राप्ति और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए एक आदेश जारी किया था और अधिकारियों से कहा था कि स्वयं सेवियों के सहयोग से गाँव में विकास कार्यों को प्राथमिकता दें।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्जवल भविष्य और अब समय है मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब से 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार है। रूस ने कहा है कि अगर नेटो ने सीमा लांघी तो क्रेमलिन परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस रासायनिक हथियारों का प्रयोग करता है तो उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। एक पूर्व इराकी सांसद ने कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र का 40% तेल इसराइल जा रहा है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट का पता नोट कर लें, pastoday.com/hi। Thank you.